पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram,
Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
राम हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम हरे राम
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
Jai Gauranga
Jai Nitai Gauranga
Jai Gauranga
శ్రీల ప్రభుపాదకి సమావేత భక్త వృందకి గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం కి ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుః ఉన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాదీ పాశ్చాత్యదేశతారిణే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయే. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్కు స్వాగత్ కర్తే హై. ఆజ్ భాగవత్ కే దశమ స్కంద్ కే లీలాఓ మే కల్ హమ్ లోగ్ సున రహే తే ధేనుకాసుర కే బారే మే హై నా. దో శబ్ద ధేనుకాసుర కే బారే మే బోల్ కర్ హమ్ ఆగే బడాయేంగే. యు కెన్ షో దిస్. एक महत्वपूर्ण चीज कल बोलना था, समय की पाबंदी था, बोल नहीं पाए, अभी बोल देंगे धेनुकासुर के संबंध में. इस दुनिया में जब जीव आ पहुंचते हैं, सब जीव स्वार्थी होकर अपने सुख सुविधा के लिए खोज करते हैं, ढूंढते हैं और विविध तरह के सुख सुविधा अर्जित करके, जैसे रोटी कपड़ा मकान, शुरुआत में तो ये सब करते हैं, उसके बाद समाज में स्टेटस, समाज में इज्जत प्रेस्टीज इत्यादि पाकर, और उसके भी आगे जाकर अनेक जीवों के नेता बनना चाहते हैं, और उसके बाद नेताओं का भी नेता बनना चाहता है कोई इंसान. तो जीव स्वार्थ होकर अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन कभी भी ये पूछता नहीं कि इस दुनिया का निर्माण किसने किया, किसने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, बारिश दिया, धान्य दिया, तरकारी दिया, फल इत्यादि दिया, श्वास लेने के लिए हवा दिया, पूछते ही नहीं इसके बारे में. ऐसे ही लूट लेते हैं, सब भोग करते हैं. जो व्यक्ति सब अनंत कोटि ब्रह्मांड के उद्गम स्थान है, परम सत्य भगवान है, जिन्होंने दुनिया रचाया है, दुनिया बनाया है, बनाकर चला भी रहे हैं, उनके बारे में कभी सोचता भी नहीं, पूछता भी नहीं. अपने ही स्वार्थी होकर अपने ही छोटे दुनिया में जैसे कुप मंडूक जैसे एक जीव रहता है. तो शास्त्र ऐसे जीवों को जगाने के लिए शिक्षा देते हैं. शास्त्र में हमें यह बात पता चलता है कि जो बुद्धिमान है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस तरह तत्व जिज्ञासा करके ये बात पर आ पहुंचता है, ये निष्कर्ष पर कि सारी दुनिया रचाया गया है परम भगवान वासुदेव से. जैसे हमने पहले श्लोक में भागवत में सुना है, सत्यम परम धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यथोन्वयात् इतरतश्चार्ते शभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोहकं सत्यं परं धीमहि। उस भगवान वासुदेव को समझना देवताओं के लिए भी नामुमकिन है, वो भी मोहित हो जाते हैं कभी कभी, ब्रह्मा हो इंद्र हो क्यों ना हो, लेकिन बाकी जनता तो अपने ही कामकाज में पड़ा है। तो कोई पूछेगा कि भगवान को जानने की क्या जरूरत है, हम अपने अपने घर को देखो, काम धंधा देखो, पैसा कमाओ, खाओ पीओ, कितना बहुत काम पड़ा है, तो भगवान के बारे में बैठकर सुनना क्या है, समझना क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ऐसे अनेक लोग पूछते हैं। देखिए भगवान के बारे में हम इसलिए जानना पड़ेगा हमको क्योंकि हम उनके ऊपर पूर्ण रूपेण निर्भर हैं। जैसे अगर कोई सोचेगा कि भोजन को लेकर पेट में डालने की क्या जरूरत है, हर एक अंग सोचता है अब हम पेट के बारे में परवाह नहीं करेंगे, हम खुद का देखेंगे, अगर हाथ एक लड्डू लेकर ऐसे मसाज करता रहता है मैं खुद ही कहूँगा पेट को क्या देने का, अगर करता रहेगा तो कुछ समय के बाद थक जाएगा लेकिन उसको पोषण नहीं मिलेगा, उसको जब तक पेट को नहीं देगा इसको पोषण नहीं मिलने वाला, ऐसे ही बाकी अवयवों का भी है। ऐसे ही इस तरह जब तक हम मूल में पानी नहीं डालेंगे तब तक डाली पत्ते फल फूल इत्यादि सब सूख जाएंगे। इसलिए भगवान ये सारे ब्रह्मांड के मूल हैं। ये शरीर में हमारे शरीर में जो पेट होता है, पेट का काम वह है भोजन डालने के बाद सारे शरीर को अवयवों को पहुंचाता हो, खून पहुंचा कर सबको शक्ति देता है। तो हम खुद को भी पोषण चाहिए हमको, तो हमें भगवान को पहचानना पड़ेगा, उनकी सेवा करके ही हम लोग जी सकते हैं। जैसे दो सत्य बताए हैं शास्त्र में, सापेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य का मतलब है जो सत्य दूसरे सत्य के ऊपर निर्भर है, निरपेक्ष सत्य का मतलब है जो किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने आप में भरपूर है, अपने आप में पूर्ण है। तो भगवान कृष्ण निरपेक्ष सत्य है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते लेकिन हम उनके ऊपर निर्भर हैं। जैसे एक कोयला होता है, लाल लाल कोयला आग के अंदर, अगर आग का संपर्क छोड़ देगा ना वो कभी कभी फट आवा जाता है, बाहर आकर गिर जाता है, उसमें लालिमा चला जाता है, कोयला काला काला हो जाता है, कुछ काम का नहीं होता है। लेकिन आग में डालो तब एकदम प्रज्वलित तो होकर लाल लाल दिखता है, तब एक कोयला से काम हो सकता है। इसलिए प्रभु जी बोलते थे कि इफ यू कट ऑफ फ्रॉम कृष्णा यू पेरिश, यू कनेक्ट विद कृष्णा यू फ्लरिश। अगर आप कृष्ण से कट जाओ गया हाथ से, तुम करोड़ों जन्मों काटना पड़ेगा, तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर अगर किसी जुलूस में अपने ही मनमानी करके कहीं चला जाता है, अनाथ हो जाता है ना, वो बच्चे का बुरा हाल हो जाता है उसका। लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप से जुड़ा है, माँ बाप के गोद में है, माँ बाप की सुरक्षा में है, उसके लिए सब कुछ भरपूर मिल जाते हैं, चिंता नहीं है उसको। इस तरह हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को भूल कर अगर हम कट जाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, तो हम विविध तरह की यातनाओं को सामना करते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया लड्डू लेकर हाथ को मसाज करने से इसको पोषण ही मिलने वाला है। इस दुनिया के अनेक भोगों को लेकर जीव भोग भोग कर रोग होता है उसको, और रोग होने के रोग से पीड़ित लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, विविध दवाएं खाते हैं, ठीक नहीं होता है, उसके बाद योग में जुड़ते हैं, योगासन करते हैं, उसके बाद योगासन करके तंदुरुस्त बनने के लिए प्रयत्न करते हैं। योग शब्द का ही मतलब भगवान से वापस जुड़ना, वो योग शब्द का ही वो मतलब है। तो भगवान की ओर जो आएगा वो ही सुख शांति आनंद इत्यादि को प्राप्त कर सकता है। भगवान को पोषण दिए बिना कोई भी जीव कभी भी सुख शांति में जी नहीं सकता। ये प्रभुपाद जी बोले अमेरिका में जब गए थे, उन्होंने बोला कि आप लोगों के देश में पैसा की कमी नहीं है, खूबसूरत शरीर की कमी नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों का अच्छा शरीर है, सड़क तो बहुत सुंदर बहुत बड़ा सड़क है, मोटर कार की कमी नहीं है, पैसा की कुछ कमी नहीं है, सारे भारत के देशों में आपके पास पैसा बहुत है। फिर हम देखते हैं कि इतने लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, इतने लोग क्रिमिनल मारामारी क्यों करते हैं, एक दूसरे को शूटिंग करते हैं, इतना डाइवर्स क्यों होता है, तो उन्होंने बोला कि जितना भगवान से दूर जाओ आप कुछ नहीं हो पाओगे। इसलिए हमें यह बात समझना है कि इस दुनिया में जो भी सृष्टि है ये सब सृष्टि भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए हमें सब सारे सृष्टि हमको विविध तरह की सुविधाओं को प्रदान करता है। जैसे प्रकृति फूल देती है किस लिए, ताकि हम भगवान कृष्ण के श्री चरणों में फूल चढ़ाए। प्रकृति फल देती है ताकि हम फल को भगवान को चढ़ाए। कल ही मैंने बताया आपको वृंदावन में जब कृष्ण बलराम अपने गोप मित्रों के साथ जंगल जा रहे थे, प्रकृति के सब पेड़ पौधे सब क्या कर रहे थे, कृष्ण को अर्पण कर रहे थे कि नहीं। हाँ, पेड़ भी फल फूल इत्यादि दे रहे थे। हाँ, यमुना भी कमल फेंक रही थी। हाँ, भ्रमर भी गूंज कर गा गा कर कृष्ण की गुणगान कर रही थी। हम बोला कि नहीं, इस तरह प्रकृति में सब उनकी सेवा देना चाहते हैं। हम उनको सेवा में प्रकृति के पदार्थों को लगाकर हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में अगर कोई गायक हो तो कृष्ण की गाना गा सकता है। अगर कोई नृत्य करता हो तो कृष्ण की यशोदा कृष्ण की लीला नाच कर दूसरों को प्रदर्शन कर सकते हैं, उस लीला प्रदर्शनी। कोई अच्छा वक्ता हो तो कृष्ण की गुणगान कर सकता है वो रामायण महाभारत भागवत बोलकर ऐसे। तो हम सब लोग के पास जो भी कला है, निपुणता है, पांडित्य है, विविध हमारे पास शक्तियां हैं, क्षमता है, बुद्धि है, सब चीज़ों को जो जब कृष्ण के सेवा में लगाएंगे उसको यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ शब्द बहुत सरल चीज़ है। यज्ञ मतलब है कृष्ण को खुश करना। जब हम भगवान को खुश करने के लिए अपनी क्षमता को इस्तेमाल करते हैं तब हमारी चित्त शुद्ध, हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है और हमें सब चीज़ें प्राप्त हो जाते हैं मांगे बिना पूछे बिना इसे। तो आप पूछेंगे क्यों कृष्ण को ये सब चाहिए क्या? उनको कुछ नहीं चाहिए, ये हमको चाहिए, इसलिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। ये आप बढ़ेंगे भागवत के पांचवें स्कंद के तीसरे अध्याय में ब्राह्मण लोग भगवान को बोलते हैं, हे भगवान आप अभी यज्ञ कुंड में अवतरित हुए हो, विष्णु को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमसे क्या लेने के लिए आए हैं, आपको तो कुछ नहीं जरूरत है, सृष्टि सब आपका ही है, आपके सृष्टि से ही हम उठाकर कुछ दे सकते हैं आपको, लेकिन आपको देने से लाभ किसको है? हम लोगों को लाभ है। तो क्या लाभ है? वो बोले हम लोग अगर आपकी कुछ सेवा देंगे आपको, उसे हमारा पाप कट जाएगा, पाप कर्म का बीज भी मिट जाएगा, पाप करने की प्रवृत्ति ही छूट जाएगा। इतना ही नहीं, हमको पुनर्जन्म इस दुनिया में नहीं लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं कि हम मुक्त हो जाएंगे, हम तो इस दुनिया में भी रहते समय कुछ आपसे वरदान चाहिए तो वरदान भी आप दे देते हैं, छोटा वरदान हो बड़ा वरदान हो आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। और कोई जीव वैकुंठ चाहता तो वैकुंठ भी प्रदान कर सकते हैं, कोई मोक्ष चाहता तो मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। आपका नाम है वरद ऋषभ, वरदराज, सबके लिए वरदान देते हैं आप। इस तरह वो बोलते हैं कि आपकी सेवा देकर हमको लाभ हुआ है, ऐसे बताते हैं। एक बार एक प्रधानमंत्री अपने देश में कुछ एक प्रदेश में गए थे, तो उधर प्रधानमंत्री जब जाता है कभी 20-20 गाड़ी जाते हैं, एक ही कलर का है, कोई पहचान भी नहीं पाता कि किस में प्रधानमंत्री बैठे हैं। तो ऐसे एक ही कलर की गाड़ी जा रहे थे, तो एक स्थान में वो उतर कर सड़क में चलने की इच्छा किया उन्होंने। चलते समय उनका चप्पल टूट गया, तो प्रधानमंत्री ने मुड़कर देखा इधर कुछ बैठा दुकान है क्या, एक बैठा का दुकान था, चले गए उधर। तो सब लोग क्लिक 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 फोटो क्लिक कर रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री चलते हुए आ रहे हैं। तो दुकान के अंदर चले गए, तो दुकानदार ने उनको बड़ा स्वागत किया, आइए आइए पधारिए, उनको बड़ा सीट दिया, बैठ गए। उन्होंने क्या शू दिखाया, सबसे बेस्ट क्वालिटी दिखाया, सबसे निम्न क्वालिटी दिखाया, बोलिए सबसे बेस्ट किसको दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को दे रहे हैं ना, सबसे बेस्ट दिखाया। तो ऐसे कुछ 25,000 का शू था वो। हाँ, तो प्रधानमंत्री खुद ही पहन आया उनको, प्रधानमंत्री पहन कर देखा कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, मैं पहन लिया उन्होंने। तो पहनते समय भी दुकानदार ने बोला, अरे क्लिक करो फोटो में, शू दे रहा हूँ। हाँ, तो प्रधानमंत्री आकर जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से एक भी पैसा नहीं लिया। कारण क्या है? उसके दुकान में जितने लोग आते थे अभी 20 गुना ज्यादा हो गया। क्यों? कारण क्या है? लोग बोलेंगे अरे प्रधानमंत्री ने शू लिया है ये दुकान से। उनका बड़ा फोटो भी लगा है बाहर, प्रधानमंत्री को दे रहा है वो शू, मुफ्त में दे रहा है वो। तो प्रधानमंत्री को मुफ्त में कितने में दिया? वो 25,000 का शू दिया मुफ्त में। अभी लोग तीन गुना बढ़ गया का मतलब क्या है, उनका लाखों रुपये का माल बिक गया, उनका लाभ हुआ नुकसान हुआ बताइए। तो प्रधानमंत्री को देखकर क्या नुकसान हुआ उनको? नहीं। अगर ये प्रधानमंत्री को आप इस तरह का ट्रीटमेंट देते हो तो भगवान तो ऐसे कोटि कोटि प्रधानमंत्रियों के भी स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हम उनको इस तरह सेवा देना की जरूरत है कि नहीं? हर एक जीव को सोचना चाहिए, अरे तुम्हारे खाना पीना दे रहे हैं, तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, श्वास लेने के लिए हवा दे रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं, हम लोग लेते हैं खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं भूल जाते हैं उनको। इस तरह इधर जो जंगल में जो धेनुकासुर था वो भी ऐसे ही एक भोगी था, तो किसी को अंदर आने नहीं दिया था। वो स्थान वृंदावन, किसका स्थान है बताइए? वृंदावन कृष्ण का स्थान है ना, उधर आकर इसने टेंट लगाया है, एंक्रोच किया है कृष्ण के प्रॉपर्टी को, जैसे कुछ लोग झोपड़ी पट्टी लगाते हैं ना किसी के प्रॉपर्टी में, ये आ गया वृंदावन में आकर डेरा लगा दिया, अपना टेंट लगा दिया इधर रहने के लिए धेनुकासुर। लेकिन सोच रहा है किसका स्थान है, खुद का, ये समस्या है। हम भी लोग आए हैं इस दुनिया में, आ पहुंचे हैं इधर से, हम सीमेंट लेते हैं, पानी लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, सब लेकर बनाते हैं, घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद सोचते हैं किसका घर है, मेरा घर है। तो भगवान के सामान को लेकर हम घर बनाकर सोचते हैं कि मेरा हो गया है, इस तरह इस दुनिया के सब चीजों को लेकर इंसान घोषणा करता है कि मेरा है। इस तरह आप देखेंगे, इतना ही नहीं, इधर जो पेड़ों में फल है अगर आकर भगवान खाना चाहते तो खा सकते हैं कि नहीं, उनका ही है ना स्थान। लेकिन ये क्या सोच रहा है, ये किसका है, ये मेरा सोच रहा है। इसलिए अनेक लोग आप देखेंगे खुद के भोग के लिए कितना खर्चा करते हैं इंसान, लेकिन भगवान को देने की समय आता है तो बहुत सोच विचार करता है व्यक्ति, एक पैसा देने के लिए भी 10 बार सोचता है। एक व्यक्ति था, उसके पास लगभग 20 घर थे एक ही शहर में, और वो भी खुद बड़ा घर में रहता था, लेकिन बुड्ढा हो गया, उसके कोई बच्चे बाल बच्चे कोई नहीं थे, वो अकेला था, बीबी अकेले थी, दोनों ठहरे हैं एक घर में और 20 घर पड़ा है। कुछ लोगों ने बोला कि देखो तुम बुड्ढे हो गए है, तुम्हारे 80 से ज़्यादा हो गया उम्र, एक दो घर भगवान के नाम में लिख दो, तुम्हारा बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं कोई नहीं, वो बोल रहा सोच कर बताऊँगा ऐसे है। तो लोग उसके पीछे पड़े, 2-3 बार गए, बाद में बोला कि ठीक है मैं पूछ कर बताता हूँ, किसको पूछना है, तुम्हारा कोई नहीं है इधर, बीबी सोई है उसको पूछ कर बताता हूँ। वो लोग बोले बीबी को अभी पूछ लो, नहीं नहीं आपके सामने कुछ नहीं बोलेगी, बाद में मैं पूछ कर बताऊंगा। ताई से सोच कर पूछ कर बोल बोल कर मर ही गए दोनों, तो सारे प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को गया। अगर उसमें 2 प्रॉपर्टी भगवान के लिए देता तो वैकुंठ में दोनों को स्थान मिलता उधर। शास्त्र बताते हैं कि भगवान के लिए कुछ मंदिर बांधो इधर, आपको वैकुंठ में स्थान रिजर्व हो जाएगा, आपको टिकट। कितना मूर्खता, अभी देखिए मरने के बाद दे सकता है क्या, गया हाथ से अभी जो प्रॉपर्टी, पता नहीं अगले जन्म किधर जन्म लेगा वो। इतना अच्छा सुविधा दिया भगवान ने, लेकिन भगवान को देने के लिए इंसान सोच कर बताएगा पूछ कर बताएगा, करेगा नहीं वो कभी इस तरह। लेकिन खुद की भोग के लिए लोग इसी तरह देंगे, बोलिए कितना खरीदते हैं, ऐशोरा में जीते हैं लोग, है ना। इस तरह धेनुकासुर भी इस जंगल में इतना फल पड़ा है पेड़ में, भगवान जो स्वामी हैं सब भूमि के गोपाल, सब भूमि गोपाल के है बोलते हैं ना, सब भूमि गोपाल के ही है, लेकिन उनको जंगल में आकर थोड़े फल तोड़कर मित्रों को देने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। ये धेनुकासुर को बोलते हैं पसेसिव मेंटालिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं पसेसिव, ग्रहण का मतलब है लेना, स्वामित्व जमाना, वो स्वामित्व जमा रहा है इसे। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम कितने कृपालु, देखिए ये धेनुकासुर बुलाए बिना वो आ गए उस जंगल में। इसी तरह हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंहदेव उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर, वो बहुत बड़े सिंहासन जो बनाया था हिरण्यकश्यप ने, किसके लिए बनाया था हिरण्यकश्यप ने बड़ा सिंहासन, खुद के लिए, सोना चांदी रत्नों से मंडित था, उसमें भगवान खुद बैठ गए। तब हमारे आचार्यों ने अच्छा तात्पर्य दिया है इसका, उन्होंने बोला कि इस दुनिया में कोई भी सेकंड हैंड चीज नहीं चाहता, सब लोग क्या चाहते हैं ना है फर्स्ट हैंड चीज। लेकिन वो आसन जो था उधर पहले हिरण्यकश्यप बैठ चुका था, फिर भी भगवान उधर आकर जाकर बैठे, क्यों बैठे, क्योंकि उनको याद आया कि ये जय विजय मेरे ही सेवक हैं वैकुंठ में, जो मेरे लिए बहुत सेवाएं देते हैं, अभी असुर बनकर आया है, इसलिए असुर जब बना तब मेरे लिए सीट बनाकर रखा, मैं जाकर बैठूंगा। ऐसे भगवान जाकर बैठ गए उस आसन में, ऐसे तो अपने सेवक की इच्छा को पूर्ति करने के लिए बैठ गए, बोले बिना, मांगे बिना, बुलाए बिना जाकर बैठे। इसी तरह इधर भी भगवान ने प्रवेश किया, किधर, धेनुकासुर के तालवन में, क्यों, उसको उद्धार करने के लिए। वह कृष्ण बलराम दोनों गए उधर। इस तरह हम लोग इस दुनिया में स्वामित्व जमा कर, भगवान को भूल कर, साधु महात्माओं के संग ना करके, कभी कभी हम लोग अपने अपने बस्ती में, अपने अपने घर में, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि लोग कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, विविध तरह के खेल कूद में मजे में टेलीविजन देखते हैं, समय बिताते हैं लोग, फिर भी साधुओं का कर्तव्य पड़ता है कि ऐसे लोगों के पास भी जाकर कुछ कृष्ण के बारे में दो शब्द बोलना चाहिए। तो इस तरह भगवान खुद आए थे जंगल में उनको, उनकी उद्धार करने के लिए, और इस ताल पेड़ के फलों को स्वीकारने के लिए अपने मित्रों के साथ आए थे। ये धेनुकासुर से सीखने लायक चीज है। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदोसु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इधर सुखदेव जी बताते हैं, इस दुनिया में जो भी आपके पास कला हो, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, यशस्वी हो, तपस्वी हो, मंत्रविद हो, ये सब लोगों का कर्तव्य कि उनके पास जो क्षमता दिया भगवान ने उसको भगवान की सेवा में लगाना है, उसके लिए दिया भगवान ने। तो हम ये बात समझना चाहिए कि भगवान को सेवा देने से खुद को लाभ होता है। जैसे प्रहलाद जी को उदाहरण देते हैं, एक आईने में अगर आपका प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब के को आप सजाना चाहते हो तो नहीं सजा पाओगे। आईने के अंदर प्रतिबिंब दिखता है ना, उसके ऊपर बिंदी लगाओगे, आप ऐसे हिलोगे तो बिंदी कहीं और रह जाएगा, लेकिन अगर आप इधर बिंदी लगाओगे तो उधर बिंदी आ जाएगा, इधर कुंडल लगाओगे उधर कुंडल आ जाएगा प्रतिबिंब में। इस तरह भगवान असली व्यक्ति हैं, हम उनके अंश हैं, हम ये प्रतिबिंब हैं उनके छोटे हैं, इसलिए उनको सजाने से हम सजाए जाते हैं, उनको देने से हमें प्राप्त हो जाता है, ये शास्त्र बताते हैं, इसको ही यज्ञ बोलते हैं। लेकिन ये देने का असर देना कभी नहीं जानता था, सिर्फ लेना जानता था, इसलिए हमने देने का असर से यह अच्छा महत्वपूर्ण चीज से सीखा हमने। और 18वां अध्याय में कृष्ण बोलते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मह निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य शरीर में कैसे तुम सिद्धि पाओगे अर्जुन, जो जो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास वर्ण आश्रम में तुम स्थित हो, तुम सब फलों को मुझे अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो बोलते हैं। अर्पण करने से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तुम योग में तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे, ऐसे बताते हैं। तो हम धेनुकासुर से सीखना चाहिए कि स्वार्थी ना बनकर, निस्वार्थ होकर सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये करना सीखना चाहिए। अभी हम आगे के लीला में बढ़ रहे हैं, कृष्ण द्वारा काले नाग को प्रताड़ना। यह लीला में भी यही देख रहे हैं, जैसे धेनुकासुर के बारे में हमने पढ़ा, ये कालिया नाग के संबंध में हम लीला के बाद हम और सुनेंगे उसके बारे में। अभी ये लीला शुरुआत होता है, हाँ पढ़िए।
कृष्ण बालकों की विषाक्त जल से रक्षा करते हैं।
इधर देखते हैं कृष्णा कि एक दिन यमुना के तट में आकर देखा उन्होंने, सब बालक उनके गोप मित्र मर गए थे, ऐसे जमीन में पड़े थे, मृत होकर पड़े थे ऐसे। देखिए कृष्ण का शरीर चमक रहा है, तेजोमय है, और उनके आंखों से दृष्टिपात मात्र करके उनको उन्होंने जगा दिया अपने सब मित्रों को। इससे देखिए वो कृष्ण के आंखों की दृष्टि उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, वो प्रज्वलित हो गया उसका शरीर, मतलब क्या है, भगवान के दृष्टि पोषणदायक है, पुष्टिदायक है। इसे इस तरह सबको जिंदा कर दिया भगवान ने, उनका अमृत वर्षा होता है उनकी आंखों से, अमृतमय आंख होते हैं। तो सबको जगा दिया भगवान ने, उसके आगे क्या हुआ?
एक बार कृष्ण बलराम के बिना मित्रों के साथ यमुना के तट पर गए। तृष्णा से प्रभावित उन्होंने जल पिया, लेकिन जल विषाक्त था, वे निर्जीव हो गए।
हाँ, उसके बाद भगवान की दृष्टिपात से सब जगे। इधर देखिए, कालिया दमन लीला का सारांश एक ही श्लोक में बोल दिया किसने? सुखदेव जी ने। उन्होंने बोला कि देखो परीक्षित, भगवान कृष्ण यमुना में यमुना के पास आए थे, उधर बहुत प्रदूषित हो गया था यमुना, उसको भगवान ने क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। कैसे? ये कालिया कालिया नाम का एक नाग ने दूषित कर दिया था, उसको भगा दिया उधर से, तो यमुना शुद्ध हो गया, बस लीला खत्म, पूरा कर दिया उन्होंने। तब परीक्षित उनको पूछते हैं कि उनको पूछेगा प्रश्न, ये कैसे हुआ कि कालिया नाम के एक सर्प उधर रहता था, वो कौन था वो इतने युगों से? और उन्हें पूछा कि आप उसका और विस्तार रूप से बताइए, आप मैं जानना चाहता हूँ, इतना जल्दी पूरा कर दिया आपने एक लीला को एक ही लाइन में। तो तब वो उनकी प्रशंसा करते हैं, सुखदेव जी आपके अंदर उत्साह बहुत है, आप इस तरह उल्लासपूर्ण लीलाओं को सुनकर आप तृप्त होना चाहते हो, मैं बताऊंगा अभी आपको, तभी बताने के लिए जाते हैं अभी आगे। इससे एक चीज हम सीखते हैं परीक्षित से, भगवान की कथाओं को उत्साहपूर्वक हमें सुनना चाहिए। एक बार हम सुदामा की लीला बोलने के लिए जा रहे थे, एक लड़का आया था, पूछा कि प्रभु जी आज कथा किसके ऊपर है? मैंने बोला कृष्ण सुदामा का कथा। ठीक है प्रभु जी, मैं आज बाहर चला जाऊंगा, आज सुनना नहीं, हमने ये कथा पहले भी सुना है, हमको मालूम है। देखिए भागवत के अंदर बताया गया कि इन कथाओं को हमें बार बार सुनना चाहिए, और हम सुनेंगे, ऐसे सुनने से भगवान की कृपा से ही हमारे हृदय में साक्षात्कार जगता है। जब भगवान हमारे हृदय में जो खड़े हैं परमात्मा के रूप में अंतर्यामी हैं, वो देखते हैं कि इसको मेरे में रुचि है, ये कथा श्रवण करना चाहता है, चित्त को शुद्ध करना चाहता है, मेरे धाम में आना चाहता है, मेरी सेवा देना चाहता है, तब तो भगवान आपको आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। अगर कोई बोलेगा एक बार सुन लिया बस, अभी और सुनने की इच्छा नहीं है इस लीला, तो आप देखेंगे भौतिक जीवन में इंसान आसानी से छोड़ देता नहीं किसी भी चीज़ को। एक लड़का पूछ रहा था हमारे भक्तों को, एक विद्यार्थी को, अरे तुम लोग कथा में जाकर इतना घंटों घंटे बैठते, बोर नहीं होता आपको? ऐसे पूछा उसने। तो वो डिवोटी थे ना, उन्होंने उसके मित्र को पूछा, देखो तुम उस स्त्री के पीछे पड़े हो सालों साल, वो तुमको मुड़कर देखती भी नहीं, तुमको वो लात दे रही है फिर भी पीछे भागते हो तुम, क्या तुमको थकते नहीं तुम बोलो? इसलिए उन्होंने बोला कि तुमको भगवत प्रेम नहीं हो तो काम में पड़ोगे तुम। इस तरह बोला उन्होंने, तुम काम होकर पीछे भागते हो लेकिन वो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है इससे, एक दिन वो भी चल बसेगी, तुम भी चल बसोगे, पता नहीं किधर जा रहे हैं आप लोग। तो लेकिन कृष्ण की प्रेम के पीछे अगर कोई उसके लिए तरसता है, भगवान के पीछे पड़ता है, ये शास्त्र में उनकी बहुत गुणगान हुआ है। भगवान खुद ही बोलते हैं कि उनके भक्तों को भगवान को प्राप्त करने में, सेवा देने में बहुत रुचि है। तो ऐसे जिनके अंदर रुचि जग गया है, वो एक आध्यात्मिक रुचि है, वो बहुत दुर्लभ है वो रुचि जगना। परीक्षित के अंदर ऐसे रुचि था। तो कृष्ण उस सरोवर में जब देखा अपने विद्यार्थी अपने मित्रों को जगाने के बाद, अंदर एक बहुत बड़ा नाग प्रवेश किया था, उसके सैकड़ों फण था, हजारों फण था लेकिन सैकड़ों फण प्रधान फण थे उसके। तो उसके मुख से ऐसे जहरीला वायु निकलता था, ऐसे निकालता था वो, जिसके कारण ऊपर उड़ने वाले पंछी भी मरकर गिर पड़ते थे यमुना के पानी में। ऐसे इतना ही नहीं, ये जो हुआ ये यमुना में नहीं हुआ, यमुना के निकट एक बहुत बड़ा झील था, यमुना के बाजू में, यमुना से ही पानी उधर बहता था उस झील में, उधर था ये यमुना, उसको कालिया दह बोलते हैं उसको। तो उस झील के तट में लोगों ने देखा, कृष्ण भी देखा कि अनेक ये हुआ, एंट हिल जानते हैं आप लोग, जो चींटी बनाते हैं ना ऐसे मिट्टी से, जिसके अंदर कौन रहता है? सर्प रहते हैं, ऐसे बहुत बन चुका था ऐसे, ये अकेले नहीं आता, अनेक सर्पों को भी साथ में लाया था वो, ऐसे वो रहने के लिए सर्पों के लिए स्थान था वो ऐसे। तो पूरा पानी काला काला पड़ गया था जहर के कारण, जो भी तट में आकर थोड़ा पानी पिया वो तुरंत तत्क्षण मर पड़े उधर ऐसे। इतना ही नहीं, वो हवा में भी इतना बहुत ताप का अनुभव हुआ लोगों को, क्योंकि विष जो निकाल रहा था इस उसमें इतना गर्मी था, वो घर में भी था जहरीला भी था वो ऐसे। कृष्ण ने सोचा कि अरे यमुना यमुना मेरे भक्त हैं, इस तरह आकर दूषित कर दिया इसने और मेरे मित्रों को भी मारा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं इसको। तो भगवान एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने कमर को अच्छी तरह कपड़े को बांध कर पानी में कूद पड़े भगवान। मैं पूरे लंबे कथा को थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूँ। पानी में जब भगवान कूद पड़े, भगवान नन्हे मने बालक थे ना, छोटे बालक, नीले बालक थे। तो पानी में कूदने के बाद ऐसा नहीं कि धीरे से गए भगवान, उनको कुछ भी चिंता नहीं था उनको, ऐसे जोर से पानी को मारने लगे हाथ से पैर से, धाड़ धाड़ ऐसे पानी का आवाज निकला बहुत जोर जोर से, जैसे समुद्र में लहरें जब उठते हैं कैसे आवाज आता है ना, ऐसे पानी को मारते समय पानी का आवाज सुनाई दिया। तो कालिया ने सुना कि अरे मेरे पानी के अंदर कोई साहस किया क्या आने के लिए, ये तो हमारे टेरिटरी के अंदर कौन आ गया। टेरिटरी का मतलब क्या, हर एक इंसान सोचता है कि जैसे कभी कभी कुत्ता भी सोचता है कि ये महिला का स्वामी मैं हूं, सोचता है ना ऐसे कुत्ता, सारे गली का मालिक मैं हूं ऐसे। तो कभी कभी रात को 2 बजे ये कुत्ता देखता है दूसरा कुत्ता आ गया, पाओ चिल्लाता है ना वो पाओ, जब चिल्लाता है सोने सोए हुए लोग उठ जाते हैं, देखते हैं अरे कुत्ता जगा दिया हमको सुबह सुबह 2 बजे। तो कभी हाथ में एक लकड़ी लेकर मारते हैं उसको जोर से, तभी की करते हुए भाग जाता है। जब भाग जाता है उसके साथ साथ उसके स्वामी तो भी निकल गया उसका। तो कभी कभी कोई भी कुत्ता कहीं से भी आकर ये गली के अंदर प्रवेश करके तत्क्षण मान लेता है कि गली किसका है, मेरा है। कभी यह कालिया पहले था नहीं इधर, कहीं और से आया इधर, अब इधर आकर क्या सोच रहा है, हाँ ये यमुना हमारा है, क्यों हमने पकड़ लिया है बस इसलिए हमारा है, वो किसका है पूछेगा नहीं, वो पूछना नहीं है उसको, ऐसे ही बैठ गया पकड़ लिया उसको स्थान को ऐसे। इतना ही नहीं, कृष्ण जो वृंदावन के स्वामी हैं, सब ब्रजवासियों के प्रिय नाथ हैं, वो खुद आ रहे हैं यमुना के पानी में, पूछ रहा है कि ये कौन आ गया अभी। तो मालिक को पूछ रहा है तुम कैसे आ गए इधर, खुद वो स्वामी नहीं है लेकिन आकर उधर रहता है। देखिए उनका सोच विचार देखिए कैसे लोगों का ऐसे है, कालिया का ऐसे था विचार उसका। और एक चीज मैं भूल गया आपको बताने के लिए, कालिया के विष के कारण सब सारे पेड़ पौधे काले काले हो गए, जैसे मानो किसी ने आग जलाया होगा उधर, इतने सब काले काले होकर सूख गए मिट गए हैं, लेकिन एक पेड़ जो था कदम का पेड़ वो एकदम हरियाली था उसमें, वो मरा हुआ नहीं था जिसके ऊपर भगवान ने चढ़ा। तो हमारे आचार्य ने टीका में बताया है कि वो पेड़ जो था उसमें पूर्व काल में गरुड़ जी ने थोड़ा अमृत डाला था, इसके कारण वो पेड़ जिंदा रहा, वो मरा नहीं, ऐसे बताया गया। साथ साथ वो पेड़ को मालूम था कि अभी कृष्ण मेरे ऊपर चढ़ेंगे और कूदेंगे कालिया को मारने के लिए, तो इसलिए वो जिंदा रहा कृष्ण के श्री चरणों की धूली प्राप्त करने के लिए। इसलिए कृष्ण के श्री चरण पढ़कर पेड़ और खुश हो गया वो। तो कदम के पेड़ के डाली में चढ़कर उधर से कूद पड़े भगवान पानी में, और जब इस तरह से तैरने लगे भगवान आवाज करने लगे, कालिया बाहर निकला, ऐसे निकलकर अपने क्रूर लाल लाल आंखों से देखा कृष्ण को। तो पहले देखा कि कौन खूबसूरत बालक है, नीले रंग का मोर पंख पहना है, इसका शरीर इतने मुलायम है ये माकन जैसे है, ये नीला बालक कौन है, पीतांबर पहना है, मुस्कुरा रखा है बहुत सुंदर तरीके से है। पहले इसको भी थोड़ा आकर्षण हुआ किससे, देखिए ये आश्चर्य की बात है, ईर्ष्यालु भी थोड़ा बहुत आकर्षित हो ही जाते हैं कृष्ण से है। जैसे जरासंध, कंस, शिशुपाल ये लोग भी कृष्ण कथा करते थे, लेकिन कथा कैसे करते थे, ये बोलते थे अरे कृष्ण ऐसे बदमाश है, ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसे बोलते बोलते कृष्ण के बारे में थोड़ा कथा भी हो जाता था उनके है, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बोलना बंद नहीं कर पाते थे क्योंकि कृष्ण के ऐश्वर्य इतने सुंदर हैं देखने के लिए। तो इस तरह ये भी काली अभी पहले देखकर थोड़ा आकर्षण हुआ उसको, लेकिन आकर्षण टिका क्या नहीं, ईर्ष्या उमड़ पड़ा उसके हृदय में, क्योंकि जहरीला सर्प है ना, ईर्ष्या उमड़ पड़ा। सोचा कि ठीक है ये खूबसूरत हो सकता है लेकिन मेरे बस्ती में मेरे इलाका में कैसे आ पहुंचा, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। वो क्या करता था कालिया, अगर कोई दुश्मन थोड़ा दूर में हो तो अपने मुंह से विष थूकता था उनके ऐसे थूकता था वो, अगर कोई निकट आ गया दुश्मन तो उसको अपने क्या बोलते हैं इसका, फर्ना से बोलते हैं, फर्न इज एक्चुअली हुड्स बट दिस इज फोक्ड सर, फोक्ड टंग, उसके जो जिह्वा जो होता है ना चहरीला जिह्वा था उससे डसता था वो, जब अगर कोई दुश्मन निकट आ गए तो। अभी कृष्ण जब दूर में ही थे उनको उधर से देखा, अपने दोनों लाल लाल आंखों के साथ देखा उसने, दुश्मन के रूप में देखा, वैसे विष थूक रहा था, जब कृष्ण निकट आए उनको डसने लगा उनके वक्षस्थल पर ऐसे। तो ईर्ष्या सर्पदा मारने की योजना बनाया उसने कृष्ण को। तो आप देखेंगे कृष्ण निकट आ गए अभी, उसको तुरंत अपने कुंडली में पकड़ लिया उसने ऐसे। तो देखिए इस तरह के कुंडली में कृष्ण को पाकर देखिए जहर भी निकल रहा है मुंह से साथ साथ। मान लीजिए अगर आपको कोई पकड़कर आपके मुंह के ऊपर जहर फेंक रहा हो क्या होगा वो मारने की योजना क्या ऐसे उसने। तब गोप बालक भागते हुए आए तो कुछ गोप बाल भागकर अपने अंदर वृंदावन गांव में जाकर सबको बोल दिया, नंदा बाबा यशोदा को भी संदेश दे दिया कि कृष्ण ऐसे सर्प के कुंडली में है। तो सब लोग भागते हुए आए, अभी आप आगे देखेंगे। तो ये अंदर गया कृष्ण को लेकर, तो सब गोपाल एक एक करके आने लगे, वो चिल्लाने लगे कृष्ण को पुकारने लगे, सब गांव के लोग आ रहे हैं देखे। तो नंदा बाबा वहां भागते ही आ रहे थे, पूछा उन्होंने, बड़ा सर्प कुंडली में पकड़ लिया, क्या कृष्ण खुद घुस गया अंदर पानी के अंदर इसलिए पकड़ा, नहीं तो जब किनारे में खड़ा था तब अपने कुंडली को बाहर डालकर उसने कृष्ण को अंदर खींच लिया, क्या हुआ बताओ आप लोग। हाँ से पूछते हुए सब यशोदा नंद बाकी गोप सब भागते हुए आए हैं, नंद बाबा देख रहे हैं अभी है? गोपियां भी देख रही है, हे कैसे हुआ कैसे हुआ। तो बलराम उनको बोल रहा है आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कुछ नहीं कृष्ण को कोई कुछ नहीं कर सकता, यशोदा सहाय नहीं कर पाती है, अभी देखते हैं अभी कृष्ण है सर्प के साथ। गोपियां बोल रही है कृष्ण को, आ जाइए आप मत सर्प के साथ खेलना मत, ऐसे बोल रहे हैं, बहुत बड़ा मोटा सर्प है, बहुत फना फैला है, देखिए ये कर रहा है वो जहर फैला रहा है। अभी यशोदा मैया उसको देखकर बेहोश हो गई, तो कृष्ण की स्थिति को देखकर। देखिए हम लोग अगर विष इससे होता था तो विष के कारण हम लोग बेहोश होंगे, लेकिन यशोदा को विष से कुछ मतलब नहीं था, लेकिन ये देखकर कृष्ण के जो सर्प के साथ देखकर उस समय वो बेहोश हो गए हैं, मेरा बच्चा वापस लौट आ गया क्या, नहीं तो मर जाएगा क्या होगा ऐसे सोचकर वो गिर पड़ी है यशोदा। तो सब लोग पानी फेंक रहे हैं, बाकी माताएं हैं, तो नंद बाबा सहन नहीं कर पा रहे हैं, नंद बाबा बोल रहे हैं अभी मैं घुस जाऊंगा पानी में, कृष्ण को बचाना ही अभी है ऐसे बोल। देखिए नंद बाबा अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं पानी के अंदर, बलराम भागते हुए आ रहा है पीछे है, बलराम आकर उनको रोका उन्होंने, नहीं नहीं पिताश्री अब मत जाइए कृष्ण आ ही जाएंगे चिंता मत करना। तो सब लोग अभी कृष्ण को देख रहे थे क्या चल रहा है ऐसे, देखिए कितना ऐसे कृष्ण आकर अभी उसके सर के ऊपर नाचने लगे हैं, नाच नाच कर ऐसे जहर निकाल दिया पूरा ऐसे। तो नंद पापा पुकार रहे हैं काना अभी ठहरो उधर ठहरो मत आ जाओ बेटा है, लेकिन कृष्ण आ नहीं रहे, एक फण से दूसरा फण में कूद मार रहे हैं, सब गोपियां रो रही है, यशोदा उठ गई अभी है। कुछ अंदर ले लिया मुख के अंदर कालियाने, ऐसे एक एक ऐसे फर्ण से पकड़कर मारने जा रहा था वो, लेकिन कृष्ण बाहर आ गए वापस। अभी कालिया का दमन करके कृष्ण भी वापस लौट आ रहे हैं। तो जब भगवान नाच रहे थे कालिया के ऊपर, ये सुंदर दृश्य है, कालिया के मुख से सब विष को निकाल कर ये खून भी निकलने लगा, विष भी निकलने लगा। कालिया को चक्कर आ गया। भगवान ने क्या किया, जब कालिया पकड़ना आया, भगवान ऐसे गोल गोल घूमने लगे कालिया के इधर उधर, तो कालिया ऐसे ऐसे उनको ढूंढते ऐसे करके उसको चक्कर आ गया। कभी कभी बच्चे भी क्या करते हैं, ऐसे अपने अपने आप ऐसे गोल गोल घूमते हैं, ऐसे रुकने के बाद क्या लगता है सारे दुनिया घूम रहा है ना, ऐसे ही लगा कालिया को भी। था भगवान चढ़ गया उसके सर के ऊपर। और अनेक अनेक श्लोक है भागवत में पढ़ेंगे, यत्यत् शिरोर नमते, ऐसे एक श्लोक है, यत्यत् शिरोर, जो जो सर झुका नहीं कालिया का, ऐसे उठा रहा था भगवान को डसने के लिए, उन फणों के ऊपर भगवान कूद पड़े। खुद कूद कर भगवान ऐसे नाचे, ऐसा नृत्य दुनिया ने कभी देखा नहीं है। इधर बताया गया कि अकेले कला नर्तक गुरु, ऐसे एक श्लोक में बताते हैं। ये किधर आएगा अभी, इधर है ये श्लोक, 10:16:26 देखिए। एवं परब्रह्म तौ च सम उन्नतां सम आनम्य तत्पृतुशिराश्वधिरूढ़ आद्यः तन्मूर्धरत्न निकरस्पर्शति ताम्र पादाम्बुजो किल कलादि गुरुर्ननर्त। बोलिए।
लगातार चक्कर लगाते लगाते सर्प के बल को बुरी तरह शीर्ण करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने कालिए के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे और सर्प के फनों पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए।
देखिए इधर लास्ट लाइन में बताया गया है, अखिल कलादि गुरु ननर्त, ये सारे 64 कलाएं हैं और हर कला में भगवान बड़े निपुण है। जैसे संदीपानी मुनि के आश्रम में दिन में वो कला सीखते थे और रात को अभ्यास करते थे, ऐसे 64 दिन में उन्होंने 64 कला सीख लिया। ऐसे इनको क्या सीखना है, कला सब इनसे ही निकलता है, सब कला के स्वामी हैं भगवान ही। तो और इधर जो कला प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कला है, नर्तक कला है। तो ऐसे भगवान नाचते समय कालिया के ऊपर, उस समय साथ साथ वो अपने मुख से आवाज भी निकल रहे थे, ऐसे गाते थे भगवान। तो वो गाना सुनकर ऊपर अप्सराएं आ गए, गंधर्व आ गए अपने अपने वाद्य लेकर, सब बजाने लगे बहुत अच्छे तरीके से, फूल की वर्षा भी हुई, देवता लोग सब ताली बजा रहे थे। इधर भी भूमि में भी यमुना के तट में यशोदा मैया नंद बाबा सब खुश हो गए, देखो हमारे बेटा नाच रहा है, कुछ भी डर नहीं इसको, वो हार गया सर्प। तो सर्प के ऊपर जब भगवान ऐसे नाच रहे थे, सर्प के सर में अनेक मणि था, वो भगवान नाच नाच कर भगवान के जो श्री चरण जो था उसमें लालिमा आ गया उसमें, उसके सर के ऊपर नाच नाच कर ऐसे। तो गोपियां भी देख रही थी तट से। तो भगवान जब भी नाच रहे थे कालिया के ऊपर इस तरह, उनका उम्र कितना है मालूम है, 5 साल 7 महीना था उनका, लगभग 5.5। तो तभी गोपियों को नृत्य करके भगवान ने दिखाया उनको, देखो मैं कैसे नृत्य करता हूँ, बाद में 8 उम्र होने के बाद रास नृत्य करूंगा, अभी उसका प्रैक्टिस चल रहा है अभी। तो भगवान ऐसे नाचा, गोपियां बहुत खुश हो गई देखकर, गोप मित्र भी बहुत खुश हुए इस तरह के अद्भुत दृश्य देखकर। तो सब लोग खुश थे, ताली बजा रहे थे, एक ही व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, किसको, कालिया को, क्योंकि मुंह से विष निकल रहा है, कौन निकल रहा है, वो क्षीण हो गया, शक्ति नहीं था उसके शरीर में, वो लगता है कि अभी मैं मरने जा रहा हूं, क्योंकि कालिया को लगा कि मानो सारे ब्रह्मांड उसके सर के ऊपर किसी ने रख दिया हो, ऐसे लगा उसको। ये तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान के पेट के अंदर क्या है, सारे ब्रह्मांड है ना। अगर बाहर बढ़ाना तो उनके लिए कठिनता नहीं है बढ़ाने के लिए है, अगर ऐसा कड़े ही नहीं रहते हैं, नाच रहे हैं ऊपर और खुद खुद मारकर नाच रहे हैं, और एक फंड से दूसरा फंड, दूसरे से तीसरा, ऐसे जंप मार रहे हैं भगवान ऐसे। देखिए अनेक लड़कियां भरतनाट्यम सीखती हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा स्टेज की जरूरत है, छत की। छत अच्छा नहीं होगा तो नाच पाएंगे क्या? लेकिन इधर इनको छत जो मिला भगवान को, ऐसा अच्छा छत है क्या ये डांस करने के लिए? तो ये तो फंड है सर्प का, ऐसा बदलता रहता है हाइट, एक फंड ऐसा, एक फंड ऐसा जाता है, लेकिन भगवान खुद मारते हैं एक फंड से दूसरा। इस तरह ये अद्भुत दृश्य सब ब्रजवासियों को देखने को मिला। लगा कालिया को अभी मैं मरने जा रहा हूं, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा अभी। उस समय नागपत्नियां आ गई, अभी पिक्चर में आप देख रहे हैं नागपत्नियां। तो नागपत्नियां भगवान की महान भक्त है, वो उन्होंने एक प्रार्थना अर्पण की, उनको अनेक प्रार्थना अर्पण किया उन्होंने, उसमें से वो बोल रही है, कस्यान भावोस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार यद वांचया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरं धृतव्रताः। बोल रही है हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि श्री लक्ष्मी श्री वो भी तपस्या करते हैं आपकी पद धूलि के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप अपने पद धूलि को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसके सर के ऊपर? खालिया, इतना महापापी के ये क्या पुण्य किया पूर्व जन्म में इसने, आप इसको इतना कृपा दिखा रहे हो, कोई जानते हैं इनका कृपा दिखाने का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान ने क्यों दिखाया कृपा इनको? एक ही कारण था, कालिया की पत्नियां भगवान की शुद्ध भक्त थी, महान भक्त थी, तो उनको खुश करने के लिए भगवान ने कालिया को भी कृपा दिया। इससे हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भक्त के परिवार में भक्त एक भक्त हो परिवार में, तो बाकी सब भक्त लोग उस भक्त से जुड़े हैं, इसलिए भगवान उनके ऊपर खास कृपा दिखाएंगे, एक चीज समझते हैं हम। इस तरह हमारे जीवन में कम से कम एक भक्त के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, संबंध होगा उस संबंध से हम भगवान की कृपा कटाक्ष को आशीर्वाद को आकर्षित कर सकते हैं इसे। तो इस तरह कालिया और उनके कालिया के पत्नी आकर बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करती है, और वो बोलती है कि हम सोच रहे थे पहले कि आप आकर नाच रहे हैं इसको मार ही दो, क्योंकि इतना जहरीला सर्प है, किसी का बात नहीं सुनता है और आपको भी नहीं मानता है, तो सबको दुख ही देता है, सब जीवों को हिंसा करता है, इस तरह हिंसा करते हुए क्रूर होकर जीने के बदले अच्छा है कि मर ही जाए, ऐसे हम लोग पहले हमने सोचा था ऐसे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं आप इसके सर के ऊपर नाचने के बाद ये थोड़ा नम्र दिख रहा है, अभी अभी नम्र बन गया है, इसलिए आप इसको इसका प्राण छोड़ दो इसको, अगर आप छोड़ देंगे। और सब कालिया की पत्नियां नागपत्नियां अपने अपने बच्चे को भी लेके आकर सामने डाला भगवान के सामने, क्योंकि हम बाल बच्चे वाले परिवार वाले हैं, अगर आप इसको मार देंगे तो बच्चों को हम कैसे संभालेंगे, पति के बिना हम विधवा हो जाएंगे हम। तब भगवान ने बोला देखो मेरे प्रिय भक्तों, ये इसको तो मैं शुद्धिकरण कर दिया, वामन हो गया ना उसका, उल्टी हो गया ना उसका, सब निकाल दिया, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें अहंकार अभी भी है, एक लास्ट राउंड मारता हूं जल्दी ऊपर, ऐसे इधर से उधर भागता, इधर से उधर भाग कर वापिस लौटा जाऊंगा तो वो भी निकल जाएगा। तब वो नागपतियां बोलती है नहीं नहीं ये और एक बार आप कूदोगे तो मर ही जाएगा ये। तो तब उसके बारे में चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है वो क्या है, वो लास्ट बोला उन्होंने, उसको बोलते हैं अविद्या। अभी अविद्या से ही अज्ञानता, अविद्या का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता के कारण ही जीव पाप करता है, और पाप करने के कारण ही उसको पाप कर्म का फल प्राप्त होता है। लेकिन कभी पाप कर्म का फल भी निकल जाता है, पाप कर्म भी छूट जाता है हमारे जीवन से, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति निकलता नहीं आसानी से। वो भगवान के हरिनाम करके भक्ति में जुड़कर धीरे धीरे सालों साल अभ्यास करके ही वो पाप करने की प्रवृत्ति मिट जाएगा मूल से, और तब निकलेगा जब अज्ञानता रूपी अविद्या भी मिट जाएगा उधर से। तो तो मेरे गुरु महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे कालिया के ऊपर, उन्होंने बोला हमारी जिह्वा भी कालिया जैसा है, सर्प जैसे है ना, हमारे जिह्वा भी ऐसे है, ऐसे बोल रहे थे। और ये सर्प अंदर से आ रहा ना ऐसे है। वो बोले कि हमारे हृदय में बहुत अज्ञानता पड़ा है, अविद्या पड़ा है, इसके कारण कृष्ण इस दुनिया में आए हैं अपने नाम के रूप में आकर हमारे जिह्वा में नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जब हम उच्चारण करते हैं, जब भगवान नाचते हैं, क्या नाम लेते हैं, हमको अच्छा लगता है कड़वा लगता है बताइए? अच्छा लगता है। अरे अनेकों को कड़वा लगता है, हमको मालूम है कितना मुश्किल है नाम देना, क्योंकि अभी तक कालिया का विषय अंदर पड़ा हुआ, काम क्रोध लोभ है, इसलिए मैं कड़वा लगता है। लेकिन अगर हम नाम लेते रहेंगे साल साल दिन ब दिन नाम लेकर, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, इधर कितना विष मिट जाएगा, तब भगवान जब नाचेंगे अच्छा लगेगा तभी, है ना। तो इस तरह बता रहे थे मेरे गुरु महाराज जी, इस तरह हमारे कालिया जैसे जो हमारी जिह्वा है, इधर भगवान को नचाने के लिए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं साला माला हो गया, अभी और एक नहीं करेंगे, तो अगर हम और दो चार माला करेंगे तो और भी नाच नाच कर भगवान शुद्ध कर ही देंगे हमको। इसलिए एकादश की थोड़ा ज्यादा ही नचाते हैं भगवान को हमारे जीवा में, ऐसे बताया उन्होंने। तो इस तरह कालिया को दमन करके, ये देखिए क्या बोल रही है ये नागपतियां, आपने जो दंड दिया इनको, ये अच्छा है कि आपने, पाला बोलती है वह। आगे बोलते हैं कि आपके दंड ही कृपा है, ये बोलते हैं कि ये एक तरह का अनुग्रह है, बोल रहे हैं। अच्छा, दंड को अनुग्रह कैसे मान सकता है? अगर पुलिस किसी को बेल्ट लेकर मार रहा है, उसको अनुग्रह कैसे एक चोर मान सकता है? वो पुलिस क्यों मार रहा है? उसको सुधारने के लिए मार रहा है, है ना। इस तरह कालिया को भी, कालिया किसी की बात नहीं सुनता था। आप कालिया के पूर्व चरित्र पढ़ेंगे, क्या पूर्व जन्म की बात नहीं, इसी जन्म के बारे में बोल रहा हूँ। वो यमुना में कैसे आ पहुंचा आप पढ़ेंगे, वो दूसरे अध्याय में आता है। एक बार कालिया ये कद्रू के परिवार के जो वासुकी के साथ अनेक हजारों सैकड़ों सर्प रहते थे, उस समूह में ये भी रहता था। तो गरुड़ जी आते थे कभी कभी आकर, एक सर्प को उठाकर लेके जाते थे, कभी मछली को उठाकर लेके जाते थे, कभी फल भी खाते थे ऐसे। तो सर्पों के समूह के लोगों ने सोचा कि ये कभी भी आ जाता है, गरुड़ जी पूछे बिना बोले बिना आ जाता है, किसी सर्प को उठाता है सबको टेंशन है, मुझे पकड़े कहीं परिवार वाले रोते हैं ना। तो उन्होंने सोचा कि हम ब्रह्मा के पास जाकर शिकायत करते हैं, ब्रह्मा जी को शिकायत किया उन्होंने। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, एक आयोजन करते हैं, आप लोग हर महीना पूर्णिमा के दिन एक सर्प दे दो उनको, और एक बहुत पहाड़ के बराबर फल भी दे दो उनको खाने के लिए। तो गरुड़ जाएगा, वो खाएगा, निकल जाएगा, और कभी भी आप लोगों के ऊपर टूट नहीं पड़ेगा, बोले बिना ऐसे कभी नहीं करेगा वो, ठीक है। सब खुश हो गए, वासुकी लीडर था उनका, तो वासुकी ने अनाउंसमेंट कर दिया, सबको संदेश दे दिया, इस तरह ब्रह्मा जी का आदेश है, हम सब पालन करेंगे। वासुकी ने भी पालन किया, सब सर्पों ने पालन किया। तो हर महीना पूर्णिमा के दिन वो रखते थे ऐसे, गरुड़ भी आता था, खाता था, निकलता था। लेकिन उन सर्पों के समूह में एक व्यक्ति था, कौन था? कालिया। उसने सोचा कि अरे ये आएगा, बैठकर खाएगा और हमको देने का है क्या है? तो कद्रू और विनता ये दो लोग होते हैं, ये कद्रू के वंश के लोग सर्प हैं सब, विनता के परिवार वाले लोग सब पंछियां हैं। तो गरुड़ विनता के पुत्र है, तो इसने सोचा कि हम कद्रू के परिवार के हैं, विनता के परिवार को हम सर क्यों झुके हम है? तो ये कालिया ने सोचा कि जो भी उधर रखा जाएगा सब मैं खा डालूंगा है। जब बहुत पहाड़ के बराबर फल रखा जाता था, पूरा ये खा बैठता था पूरा कालिया। एक दिन गरुड़ ने देखा कि अरे ये पूरा खा लेता है क्या, हमने सोचा क्यों ये लोग नहीं दे रहे हैं आजकल, ऐसे सोचा था उसने। अभी देख लिया कि अभी काले के साथ उधर वाद विवाद हुआ, काले बोला तुमको जो करना करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ऐसे बोल दिया। देखिए ये ब्रह्मा जी की आदेश है, कोई उल्लंघन कर सकता है क्या उसका? लेकिन इसमें उनका भी बात उल्लंघन किया। अभी सर्पों का सर्पों के समूह का लीडर कौन था? वासुकी। वासुकी के तो उन्होंने पहले से उल्लंघन कर दिया, गरुड़ की बात भी नहीं माना, ब्रह्मा जी का भी आदेश जो था उसको पालन नहीं किया। इस तरह मनमानी करने वाले लोग इस दुनिया में होते हैं, और ऐसे मनमानी करने वाले लोग खुद को भी तकलीफ में डालते हैं, दूसरों को भी तकलीफ में डालते हैं। ऐसे जैसे हम लोग इस्कॉन में हैं, कभी कोई लोकल अधिकारी आपको कुछ बोलते हैं करो, लोग करते नहीं, कभी अध्यक्ष बोलता है नहीं करते। अगर जीबीसी हैं, ब्रह्मा जी जैसे हैं, वो भी कुछ आकर बोलते हैं कि मत करो, फिर भी वो कोई करता है तो क्या किया जाए। ये काले का टेंडेंसी होता है इस दुनिया में भी, जो जीवों में इस तरह किसी का बात नहीं मानना, मनमानी करना, अपने इच्छा अनुसार सब चलाना, किसी की बात नहीं मानना, ऐसे कालिया ने किया। तब गरुड़ ने बोला, अरे मूर्ख, तुम किसी का बात नहीं मान रहे हो क्या? अभी देखो मैं तुमको एक सबक सिखाऊंगा। ऐसे गरुड़ जाकर उसके साथ उसको अपने पंखे जो थे ना सुनहरा पंखे से फट 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 करके मारने लगे। तब काले को पता चल गया कि अरे गरुड़ बड़ा शक्तिशाली है, अपने उनका हाथ होता है ना पंजे, पंज बोलते हैं पंजा, अपने पंजा से मुझे फाड़ देगा ये, बहुत शक्तिशाली पराक्रमशाली है, इसलिए मैं इसके बात भी नहीं मानूंगा लेकिन मैं इससे बच भी जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, इसको जो रखते हैं ऑफरिंग भोग रखते हैं उसको खा भी डालूंगा और इसके द्वारा मारा भी नहीं जाऊंगा, तो कैसे कर सकता हूँ, किधर भाग सकता हूँ, सोचा उसने। तब उसको ये कहानी याद आया कि एक बार गरुड़ यमुना में जाता था रेगुलर, जाकर एक एक मछली को उठा कर लेके जाता था, तो मछलियों ने मैत्री जोड़ लिया सौबरी मुनि के साथ, दो पानी के अंदर वो तपस्या करते थे वो। तब सौबरी मुनि ने बोला कि आप लोग चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। गरुड़ जी को उन्होंने बोल दिया, इधर तुम कभी नहीं आने का, ठीक है, अगर यमुना में आकर कभी किसी मछली को नहीं उठाने का, वो सब मेरे फ्रेंड हो गए अभी। तब गरुड़ ने सोचा कि ठीक है, अब लेकिन आज इतना दूर आया हूँ, बहुत भूखा भी, खाना पड़ेगा, ठीक है एक मछली उठा लेकर लेता हूँ आज, लास्ट लास्ट मछली है, उसके बाद देर नहीं आएंगे। तो ऐसे एक मछली को उठाए, वो लीडर मछली था वो, सब मछलियों का वो, उनका उठा कर ऊपर गया। तब सौबरी मुनि बहुत क्रोधित होकर जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, अरे दूर, तुमको बोला कि उठाना नहीं, सुनता नहीं मेरा बात, अगले बार तुम इधर आओगे मछली पकड़ने के लिए तुम्हारा चर सर चूर चूर हो जाएगा। ऐसे उन्होंने एक श्राप दिया उनको। तो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के ही वाहन गरुड़ी, कोई उनको श्राप दे सकता है क्या कोई? लेकिन सौबर ने गलती से दे दिया उनको, सही नहीं था। भगवान के वाहन कितने निकट पार्षद होते हैं भगवान के, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। गरुड़ जी जब अपने पंखा हिलाता है तभी वैदिक मंत्र निकलते हैं, ऋग्वेद का मंत्र निकलते हैं, तो सामवेद का, सामवेद का मंत्र निकलते हैं, तो व्यम नमामि नारायणाय श्रीलक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि, ऐसे भगवान का स्मरण करते करते वो उड़ता है, वो भगवान को अपने पीठ में लेकर। ऐसे एक महान भक्त गरुड़ को उन्होंने श्राप दे दिया, बड़ा गलत किया, तो इसलिए गरुड़ उधर जाता नहीं था यमुना के पास। ये किसको मालूम था? कालिया को मालूम था, इसलिए कालिया ने सोचा, पट पट करके जब मारा गरुड़ ने, तो कालिया भागते हुए यमुना में पहुंच गया, तो गरुड़ उधर नहीं गया। कालिया ने सोचा कि यमुना में जाकर मैं रहूंगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा मुझे ऐसे, तो उधर जाकर पूरा दूषित कर दिया पानी को। ऐसे देखिए, हमारे सौबरी मुनि का प्रोग्राम गलत प्रोग्राम हो गया, क्यों? मछलियों के साथ उन्होंने मैत्री जोड़ा, बाद में उनका पतन हो गया, तो वो यमुना से वो निकल गए, वो जाकर 50 मंदाता राजा के बेटियों से विवाह किया उन्होंने। तो मछलियों ने पहले गरुड़ को भगाया, लेकिन अभी ये आकर जहर से फैला दिया, किसने? हाँ, क्या मछलियों को बचा पाए सौबरी मुनि? नहीं। तो इस तरह आप देख सकते हैं, भगवान की भक्तों के विरुद्ध इस तरह अपराध करना बहुत बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए कालिया इधर आया था अभी। तो ये बताते हैं कि इस कालिया को, काले के ऊपर आप नाच कर आपने जो दंड दिया उसको, आपने अनुग्रह किया इसको, क्यों? आपने इसके अहंकार को मिटा दिया आपने, अभी नम्र बन गया हमारे पति, हम सब कुछ हैं, ऐसे बताते हैं। वो बता रहे हैं कि इन्होंने क्या तपस्या किया पूर्व जन्म, पता नहीं हमको, आपकी श्री चरणों की धूली प्राप्त हुआ, ऐसे गुणगान करती है। लक्ष्मी भी वांछा करती है आपकी दूली प्राप्त करने के लिए, उनको मिलता नहीं। तो वो ये जो नागपतियां 11 बार नमन करती है, एक एक श्लोक बोलकर ऐसे नमन करती है और एक श्लोक बोलकर नमन करती है ऐसे 11 बार ऐसे होता है। तो उनकी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं कालिया के पत्नियों का। तो ये गुणगान करने के बाद कालिया देख रहा था उसको ना? कालिया देखकर कालिया ने बोला भगवान को, अभी धीरे से बोलने लगाओ, आवाज निकाला। जो अपने पत्नियों ने बोला प्रार्थना उसको ही ये भी दौर आया कालिया भी है। उससे थोड़ा दो चार चीज पकड़ लिया उनकी पत्नियों के प्रार्थना से। देखिए पहले कालिया के पास आकर पत्नियां कृष्ण के गुणगान करते थे, वो सुनता नहीं था, बोलता था कि मेरे समय की बर्बादी मत करो, निकल जाओ आप लोग, अगर आपको भक्ति करना तो करो, मैं कभी नहीं करूंगा, ऐसे बोलता था वो कालिया। लेकिन अब कैसे बोल पाया इतने श्लोक, वो 4-5 श्लोक बोलता है वो कालिया, कैसे बोल पा रहा है? क्योंकि भगवान नाच नाच कर उसको नम्र बना दिया। तो नम्रता के साथ अगर कोई सुनता है तो अच्छी तरह हृदय में जाकर बैठ जाता है वो। ये बात हम सीखते हैं, हम नम्र हुए बिना अहंकार के साथ हम प्रवचन सुनते हैं तो दिमाग में घुसता ही नहीं वो, ये कान में घुसता है दूसरा कान निकल जाता है। इस तरह आप देखेंगे अनेक लोग कतरों के बीच में ही भगवान का शरण लिया है, जैसे द्रौपदी, जैसे गजेंद्रा, करेक्ट है ना, जैसे अजामिल ने नारायण पुकारा। इस दुनिया में कतरे नहीं होते तो हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं भक्ति में भी है। तो इस तरह विविध तरह के तकलीफ दुनिया में तो आते रहते हैं एक के बाद एक, इसलिए उन कतरों का लाभ उठाकर हमें भगवान का स्मरण में जोड़ना चाहिए उनको। ऐसा ना होगी कि हम कतरों, एक भक्त पूछ रहा था आज, प्रभु जी कोरोना से इतना डर हो रहा है हमको, कैसे हम भक्ति कर पाएंगे, कभी भी हमारा शरीर छूट जाएगा, कभी कुछ हो सकता है, सर डर होता है, प्रभु जी भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि भक्तों के लिए क्या चिंता है, आप लोग जानते हो कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आप माया का दास नहीं हो, आप कृष्ण दास हो। शरीर अगर छूट भी जाएगा, हम कृष्ण की भक्ति कभी छूटेगा नहीं, हम अगले जन्म में जारी रखेंगे उसको। इसलिए उन्होंने बोला करोना का मतलब है डरो ना, तुमको डरना नहीं है, ऐसे बोला उन्होंने। तुम डरो मत, अगर डर भी होता तो वो डर से भक्ति में गंभीरता होनी चाहिए। जैसे एक बार एक घर में एक माता पिता थे, उनको बच्चे के साथ खेलने की इच्छा हुई, छुट्टी का दिन था, पिताजी बुला रहे थे, बच्चा नहीं जा रहा था, क्यों? वो एक जो टेडी बैर होता है उसके साथ खेल रहा था, वो उधर एक कोने में खेल रहा था वो। पिताजी को बच्चे के साथ खेलने की इच्छा है, वो टेडी बैर के साथ खेलता है मूर्ख। एक दो अचानक को कमरे में एक बहुत बड़ा भ्रमर आ गया, ऐसा आया तो भ्रमर को देखते ही बच्चा उठ गया, टेडी बैर को फेंक दिया, भागते ही आकर पिताजी के गोद में बैठ गया, पिताजी को आलिंगन कर लिया हुआ है वो भ्रमर को देखकर। तब पिताजी ने सोचा देखो बच्चा अपने आप आया मेरे पास, उसको उठाकर ऐसे ऊपर फेंकने लगे, फेंक कर पकड़ा उन्होंने। तो बच्चे को इतना अच्छा लगा, तब उस बच्चे को पता चला कि पहले में वो एक मृत खिलौना के साथ खेल रहा था, कुछ काम का नहीं हुआ, ये खेल जो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, है ना कहना। अभी चेतन वस्तु जो होता है, अभी भगवान परम चेतन है, हम एक क्षुद्र चेतन है, हमको पता अनुच्छेद वस्तु और भगवान बृहच्छेद वस्तु है, इनके बीच में जो लीला का आदान प्रदान होता है उसमें जो मधुरिमा है वो जड़ पदार्थ के साथ आदान प्रदान करने में नहीं है। तो बच्चा भी वो समझ गया, टेडी बेयर के साथ में खेल रहा था, कुछ काम का नहीं है वो, अभी पिताजी के साथ खेलूंगा मैं, ऐसे सोचा उसने। इस तरह हम लोग भी इस दुनिया में जड़ पदार्थ के साथ हम खेलते हैं कूदते हैं, है कि नहीं है? लोग मोबाइल से आकर्षित होते हैं, गाड़ी से आकर्षित होते हैं, घर मकान बांध कर उन चीज़ों से आकर्षित होते हैं, चमकने दमकने वाले चीज़ों को, पदार्थों को खरीद कर रखते हैं अपने घर में लोग ऐसे हैं। तो इस तरह की जड़ पदार्थ के ऊपर आकर्षण से उसको उठाकर अगर कोई प्रभु भगवान की और आकर्षण बढ़ा लेगा तो बड़ा भाग्यशाली है। इस तरह कालिया ध्यान पूर्वक वो प्रार्थनाओं को सुनकर दोहराया उसने भी। अब उसमें उनकी प्रार्थना में एक प्रार्थना बोलता है काले यार, सुंदर प्रार्थना, क्या बोलता है? वो बोलता है कि देखो भगवान, मैं तो सर्प हूँ, सर्प से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम लोग तो जहरी, हम लोग तो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के ही हैं, और आप जानते हैं 84 लाख योनिया में आपने जीवों को डाला है, और आपने मुझे सर्प के योनि में डाला है, इसलिए मैं क्यों ईर्ष्यालु हूँ पूछो मत, क्योंकि सर में आपने डाला इसलिए मैं ईर्ष्यालु हूँ, ऐसे बोलता है वो बोलता है क्या करे, और बोलता है कि ठीक है, अगर आपको हमको मारना तो मारिए, जिंदा छोड़ना तो जिंदा छोड़िए, आपकी इच्छा, ऐसे बोलता है वो कालिया। तो भगवान ने सोच लिया क्या करना चाहिए इनको, जिंदा छोड़ो इनको, मारो मत, क्योंकि उनकी पत्नियों ने विनती किया है, भगवान ने छोड़ दिया। तब भगवान ने कालिया को बोला, कालिया ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हारे ऊपर नाच कर तुम्हारे जबड़ा तोड़ दिया, तुम्हारे सर तोड़ दिया, टूटा फूटा है, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि तुमने सारी यमुना को जहरीला बना दिया, मेरे गोप बालकों को मार दिया तुमने, इसलिए मुझे इस तरह नाच कर तुमको दमन करना था, चिंता मत करो, ये एक क्षण में मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारा हाल अभी। तो भगवान अपने हस्त कमल से उसके जिधर भी क्रैक हो गया था उधर स्पर्श करके उसके रिपेयर कर दिया, तुरंत तत्क्षण ऐसे रिपेयर कर दिया भगवान ने ऐसे। तो काले को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे एकदम तंदुरुस्त हो गया मेरा शरीर, ठीक ठाक हो गया भगवान की स्पर्श मात्र से, बहुत खुश हो गया कालिया, भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। इसलिए भगवान का नाम, एक नाम है प्रियंबदा, उसका मतलब बहुत प्रेम से बात करते हैं, अपने दुश्मन को भी भगवान अपना उनके साथ भी मैत्री जोड़ लेते हैं ऐसे। तो उसके बाद कालिया खुश हो गया, तब कालिया ने बोला है, भगवान अभी मेरी इच्छा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाए, तो मेरे पास अनेक भरपूर आभूषण है, मैं आपको सजाना चाहता हूँ। तब भगवान ने एक बुद्धिमता से एक काम किया, क्या किया उन्होंने, अपने वक्षस्थल में जो कौस्तुभ मणि होता है ना, उसको उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने फेंक दिया किसमें, वो डब्बा के अंदर, वो जो ज्वेलरी बॉक्स था ना उसमें। तो भगवान देखना चाहते थे कि ये महंगा जो कौस्तुभ मुझे दे रहा है कि नहीं है। तो कालिया ने सब आभूषण उठाकर भगवान को पहनाते समय वो कौस्तुभ मणि को भी पहना दिया, और उनके जो डब्बा में सबसे महंगा जो रत्न थे उन रत्नों को लेकर भगवान को सजाने लगा वो। तब भगवान समझ गए कि इसके अंदर भोग करने की प्रवृत्ति चला गया है, अभी समझ गए भगवान। हमारे जीवन में भी हम एक बार में बच्चों को पूछा, कुछ छोटे बच्चों को, अगर मैं आपको 4 बन देता हूँ, 2 बन में चेरी नहीं, 2 बन में चेरी है, और तुमको 1 लेना है और बाकी 3 बच्चों को देना है, तुम क्या करोगे? तो एक बच्चा बोला, मैं तो चेरी वाला रखूंगा मेरे पास, और बाकी जो भी है उसको दूसरों को दे दूंगा, ऐसे बोला उसने। तो और एक बच्चा था, वो बोला कि प्रभु जी, मैं सबको पूछूंगा कि कितने लोगों को चेरी अच्छा लगता है, अगर 2 बच्चे बोलते हैं हमको चेरी अच्छा नहीं लगता तो उनको वो दे दूंगा जिसमें चेरी नहीं है, और हम बाकी हम लोग 2-2 लेंगे। तो तीसरा बोला, अगर सब लोग चेरी पसंद करते हैं, 4 के 4 बच्चे, मैं क्या करूंगा, उस चेरी को काट दूंगा आधा, एक आधा इसमें, आधा इसमें, आधा इसमें, आधा इसमें, 2 चेरी को 4 में बांट देंगे, उसके बाद हम दे देंगे। तो अलग अलग बच्चों का जवाब अलग अलग, क्योंकि लोगों के स्वार्थ भावना के ऊपर निर्भर है कितना स्वार्थ है। तो पहले कालिया इतना स्वार्थ था, भगवान को अपने कुंडली में ऐसे बांध कर उनको मारना चाहा वो, लेकिन भगवान ने क्या किया, कुंडली में जब बांध कर रखा था ना, भगवान ने अपने आप को थोड़ा विस्तृत कर दिया ऐसे, ऐसे किया भगवान ने, भगवान का साइज ऐसा होकर ऐसा हुआ, वो डर गया वो, कौन कालिया, सोचा कि अरे वो तो रबर बैंड अगर आपने बांधा है, इतना साइज का एक सामान इतना बड़ा होकर ऐसे बोलता तो रबर बैंड क्या होगा, फूट जाएगा ना ऐसे, उसका शरीर फूट जाएगा। वो सोच रहेगा अरे इतना बड़ा कर सकता है शरीर, तो मैं मर ही जाऊंगा मैं, इसलिए उसके बाद थोड़ा ढीला छोड़ दिया। तब भगवान कूद गए ऊपर, तो अब कालिया नम्र बन गया, भगवान को सजाया अच्छे तरीके से। अभी भगवान ने कालिया को आदेश दिया, कालिया निकल जाओ इधर से, तुम इधर कभी नहीं रहने का, क्योंकि तुम विष फैलाते हो इस तरह, सब लोग डरते हैं तुमको देखकर। तो कालिया तब बोला भगवान को, आपके आदेश अनुसार मैं चले जाऊंगा दूर प्रदेश नागालय, जिधर भी जाना हो अपने आदेश में चले जाऊंगा, लेकिन मैं बागशाला नहीं हूं आपके लीला में भाग लेने के लिए, लेकिन अगर आपकी जरूरत हो तो आप बुलवा दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा आपको और बाकी गोप बालकों को पीछे बिठाकर, मेरे पीठ में बिठाकर आपको सवारी के रूप में लेके जाऊंगा पूरे वृंदावन में। इस तरह भगवान के साथ मैत्री जोड़कर वो निकल गया कालिया उधर से। तो इस तरह अनेक प्रार्थनाएं करता है ऐसे। भगवान कालिया से काली को भगा देते हैं उधर से। हाँ पढ़िए।
काली प्रतिनिधित्व करता है निर्दय क्रूरता और विश्वासघात, ब्रजवासियों को विषाक्त किया, अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति।
हाँ निर्दय क्रूर, हाँ दया ना दिखाकर क्रूर दिखा, क्रूरता दिखाना, और विश्वास घातक काम करना, और ब्रजवासियों को विषाक्त किया। करेक्ट, आफा फैलाने वाले। एक आफा को भी विषय से तुलना किया है। एक भक्तों के समूह में किसी दूसरे भक्त के बारे में आफा नहीं फैलाना चाहिए। अनेक बार क्या होता है, कुछ भक्तों के बारे में विषय हम सुनते हैं, वो सही है क्या गलत है क्या, अगर हमको ठीक तरह से मालूम नहीं है क्या, तो इसमें क्या होता है, अनेक लोग सुनकर दूसरों को बता देते हैं, वो सही ढंग से समझते नहीं कि ये सत्य है बात है गलत बात है, समझते नहीं। इस तरह वो विष फैल जाता है एक समूह में, गलत आरोपण करते हैं, गर्व धोखा क्रूरता दूसरों को हिंसा करना इत्यादि। काले का इतिहास भी मैंने बता दिया आपको, इधर लिखा है इन्होंने कृष्ण संहिता में। ये बढ़िया।
कालिए गर्व धोखा क्रूरता और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है, भक्तों को इसका त्याग करना चाहिए। कालिए का द्वेष हमेशा यमुना के पानी को प्रदूषित करता है जो कि वैष्णवों का आध्यात्मिक रस है। इस दसवीं बाधा को छोड़ना सभी का कर्तव्य है।
देखिए आपको एक आश्चर्य होगा कि यमुना तो पवित्र स्थान है, कालिंदी यमुना कृष्ण की भक्त है, तो उधर कैसे व्यक्ति पहुंच गया, आपको प्रश्न उठता है ना मन में, क्योंकि इतना दूषित व्यक्ति है, जहरीला व्यक्ति है, ये भक्तों के विरोधी है, अपराध करने वाला है, भक्तों को मारने वाला होता है कालिया, क्योंकि उनके उसके कारण गोप बाल मर गए हैं। ऐसे व्यक्ति यमुना में कैसे आ पहुंचा, हमारे आचार्य ने टीका में दिया है, क्योंकि उसको लाफा मिला किसके पंखों से, तो उधर से उनका भक्ति चालू हो गया। तो इस तरह आप एक भक्त के साथ संपर्क होता है तो उससे हम वृंदावन पहुंचने के लिए हम योग्यता प्राप्त होता है। तो हालांकि गरुड़ जी ने फाट 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 करके कालिया को मारा ऐसे अपने पंखों से, वो मारना ही उनको, वो जैसे कृपा देते हैं ना मध्यम अधिकारी लोग नए नए आदमी को भक्ति में जोड़ते हैं, ऐसे उन्होंने भक्ति में जोड़ दिया, उनकी लाफा पाकर वो आ पहुंचा यमुना में। वो एक चीज है। दूसरा चीज है, यमुना में आकर आश्रय लेने के कारण उसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल बन गया ना? किसका, कालिया का। ऐसे तो इधर बताया गया कि ये यमुना को तुलना किया है एक भक्त समूह से, जैसे हम लोग इस कान में रहते हैं भक्तों के समूह में रहते हैं, और उस यमुना में कौन खेलते हैं, गोप बाल खेलते हैं, गोपियां खेलती हैं, जैसे बड़े गोप गोपियां भी आते हैं उधर। तो यमुना ब्रजवासियों के बहुत बड़ा खास स्थान है, जैसे गोवर्धन, जैसे यमुना, जैसे वृंदावन के खेती इत्यादि। तो अभी उधर आकर ये लोग रोज आते हैं उधर ऐसे ऐसे स्थान, इसी तरह ये कालिया बाहर का व्यक्ति उधर आ जाता है, यमुना में आकर घुस जाता है, लेकिन एक गलत उद्देश्य के साथ आकर ठहरा है उधर, क्योंकि गरुड़ की बात भी नहीं मानना, वासुकी की बात नहीं मानना, ब्रह्मा की बात भी नहीं मानना, किसी की बात नहीं मानना, अपनी मनमानी करना है? इस तरह करते हुए कुछ लोग कभी एक स्थान को छोड़कर, कुछ लोग एक मंदिर में रहते हैं, इधर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, कहीं टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि मूल कारण क्या है, किसी का बात मानते नहीं, किसी को सुनते नहीं, अपने ही मन को ही सुनते हैं, दूषित मन को ही सुनते हैं वो, और उनका अहंकार भी बहुत होता है। जिसके कारण इसके साथ झगड़ा करने का निकल जाने का, इधर झगड़ा करने का निकल जाने का, इधर निकल, ऐसे करते गोल 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 घूमते रहते हैं, कहीं टिक नहीं पाते हैं। तो कालिया भी ऐसे ही किया, अपने समूह के साथ झगड़ा करके इधर आकर पहुंचा, और इधर भी आकर क्या शांत रहा क्या, कितना तकलीफ दिया देख सकते हैं। इधर बताते हैं कि कालिया द्वेष को संबोधित करता है, और जिस तरह यमुना के पानी को प्रदूषित किया उसने। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, ये कॉन्फ्रेंस था, उसमें गंगा बचाओ यमुना बचाओ इसके ऊपर था कॉन्फ्रेंस, मैं भी गया था उसमें। तो कुछ बाकी अलग अलग लोग भी आए थे उसमें, अनेक नेता लोग आए थे। तो एक नेता ने बोला उसमें, उन्होंने देखा मुझे इस कपड़े में देखा, अच्छा हरे कृष्ण जी, तो बोला कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण के एक प्रतिनिधि आए हैं हमारे इस सभा में, ऐसे बोले, तो मैं कृष्ण के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने सोचा क्या बोलने वाले हैं, सही बोलना चाहिए, कुछ गलत ना बोले। तो वो बोले कि 5,000 साल के पहले यमुना में प्रदूषण फैला दिया किसने, कालिया ने, लेकिन कृष्ण आकर नाच नाच कर काले को दमन करके भगा दिया और पानी यमुना के पानी को निर्मल बना दिया उन्होंने, पहले जैसे कि वैसे एकदम निर्मल साफ सुथरा बना दिया इसे। इसी तरह वो बोले कि हम स्वामी जी से विनती करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रार्थना कीजिए, आजकल के कालिया कौन है, फैक्ट्रीज है, कारखाना, और वो लोग प्रदूषण निकलते हैं इसके अंदर, यमुना और गंगा के अंदर इतना डाल देते हैं अंदर गंदगी। तो स्वामी जी कृष्ण को प्रार्थना कीजिए कि कृष्ण आकर नाच कर इन सबको प्रदूषण को निकाले, ऐसे बोला उन्होंने। तो लेकिन आजकल यमुना साफ हुआ है, मालूम है आपको, आजकल पहले से बहुत साफ किया है, भक्त हमारे इस्कॉन के भी भक्तों ने लीडिंग लिया है। तो एक बार मेरे गुरु महाराज एक प्लेन में जा रहे थे, मेनका गांधी जी आई थी, तो उन्होंने महाराज जी को पूछा उतरते समय, स्वामी जी आप एनवायरमेंट के लिए क्या करते हो, आप व्हाट आर यू डूइंग फॉर द, क्या बोलते हैं, पर्यावरण, पर्यावरण के लिए आप क्या करते हो, आप लोग ऐसे बढ़कर नाम जपते हैं बस, कुछ पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करते आप लोग। तो महाराज बोले उसको, देखो तुम बाहरी पर्यावरण के लिए काम करते हो, हम अंदर की पर्यावरण के लिए काम करते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। और ये भी बोला उन्होंने, जब अंदर की पर्यावरण को हम साफ कर देंगे तो बाहर की पर्यावरण साफ अपने आप रहेगा। तो बोले कि भगवान के भक्त लोग कभी यमुना में प्रदूषण नहीं डालेंगे, इस तरह प्रदूषण डालने वाला अभक्त होता है, नास्तिक होता है, वही इस तरह करेगा वो। तो महाराज बोले कि जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि व्यसन है, इत्यादि वासनाएं हैं, वो व्यक्ति बाहर की दुनिया में भी हिंसा करेगा, द्वेष करेगा, तरह तरह के समस्या को समझ में डालेगा दुनिया को, ऐसे बोले। तो माता को बहुत अच्छा लगा, सही बताया आपने, तो आप लोग ये काम कीजिए, सब लोगों के चित्त को शुद्ध करने के लिए आपकी ये जो अच्छा काम कर रहे हैं प्रचार काम कीजिए, ऐसे बोला उन्होंने। तो इस तरह द्वेष भावना इत्यादि बताते हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं और क्या है। देखिए पूर्व जन्म के बारे में इधर थोड़ा वर्णन है, इधर क्या है, गर्ग संहिता से लिया गया है, इधर दूसरा अध्याय से। ये स्वयं मनु के मनमंत्र में ये घटना एक घटी, क्या है, दो ऋषि थे, एक थे वेदशिरा, दूसरा थे अश्वशिरा मुनि, वेदशिरा अश्वशिरा दो मुनि थे। तो एक बार अश्वशिरा मुनि आए थे तपस्या करने के लिए विंध्या पर्वतों में, आकर देखा कि एक सुंदर आश्रम था, वो किसका आश्रम था, वो वेदशिरा मुनि का आश्रम था। अंदर आ गए और बैठकर अपने ध्यान में लग गए, ऐसे जब वेदशिरा मुनि वापस लौट आए तब बहुत उनकी आंखें लाल लाल हो गई, वो बहुत क्रोध करने लगे, हे ब्राह्मण तुम ऐसे कैसे आकर बैठ गए, अरे मेरे आश्रम में आकर बैठ गए तुम, ऐसे उन्होंने चिल्लाया उसको, तुमको दूसरा स्थान नहीं मिला, इतना बड़ा विंध्या पर्वत में इतना स्थान भरा पड़ा है, तुम क्यों मेरे आश्रम में आकर बैठे हो, ऐसे। तो इसको सुनकर अश्वशिरा मुनि बहुत नाराज हुए, वो भी उनके शब्द सुनकर उन्होंने बोले, हे वेदशिरा ऋषि मुनियों में बड़े श्रेष्ठ, तुम सोचते हो कि ये झोपड़ी तुम्हारा है, ये तो महाविष्णु का है, सब भूमि गोपाल के है, बोलते हैं ना, ऐसे ही बोला इन्होंने, महाविष्णु का है ये, तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं, और तुम्हारे अंदर आदत देखो, मैं तू तू करते हो तुम, ऐसे बोला उन्होंने। आपको मालूम नहीं है विंध्य पर्वत में कितने लोग आकर तपस्या किया है, विंध्याचल जो है एक दिव्य स्थान है, इधर कोई भी आ सकता है, आकर तपस्या कर सकता है। तुम अनावश्यक मेरे ऊपर क्रोध करते हो, और तुम सर्प जैसे करता है ना, सर्प ऐसे इस तरह फुफकारते हो, इस तरह फुफकारते हो तुम, इसलिए तुम एक सर्प बनकर ये मैं तू तू आदत जो है उससे छूटो, ऐसे उनने बोला। और उन्होंने ये भी बोला, तुम सर्प जब बनोगे तब तुमको गरुड़ से डर होगा, क्योंकि अभी तुम सोच रहे हो कि सब स्थान तुम्हारा है, विंध्या पर्वत के सब स्थान तुम्हारा है, जब गरुड़ आएगा तभी तुमको अच्छा सबक देगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो इस तरह वैश्वर मुनि जो है उन्होंने बोला अश्वशिर को, फॉर स्लाइट ऑफेंस यू प्लॉट ग्रेट रिवेंज, यू आर लाइक अ क्रो, बिकम अ क्रो। वो बोला कि तुम ये काक बन जाओ, क्योंकि छोटी चीज के लिए तुमने बड़ा श्राप दिया है ऐसे। तो अतः विष्णु उधर उपस्थित हुए, भगवान विष्णु खुद आए दोनों को शांत करने के लिए। अरे तुम भी एक ऋषि हो, ये भी एक ऋषि है, तुम दोनों इस तरह झगड़ा कैसे कर सकते हो आप, हा? तो और दोनों को बुरा लगा विष्णु को मिलने के बाद, हाय हाय हमने क्या कर दिया, हम एक क्रोध के वश में आकर कुछ भी उटपटान चीज बोल दिया, हमने श्राप दे दिया ऐसे। तो विष्णु ने बोला, देखो अब दोनों मेरे दो हाथ के बराबर हो, मेरे मेरे शरीर के अंश के बराबर हो ऐसे। इस तरह उन्होंने बोला। तो भगवान ने बोला कि कभी मेरे भक्तों के मुख से निकले हुए बात को कभी मैं झूठ नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा एक व्रत है। इसलिए ओ वेद शिरोमणि, आप चिंता मत करो, आप सर्प बनोगे लेकिन मैं मेरे श्री चरण को आपके सर के ऊपर रखूंगा, तुम चिंता मत करो, ऐसे उनको आशीर्वाद दिया। और इसके कारण उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे सर के ऊपर मेरा श्रीचरण पड़ जाएगा, उसके बाद तुमको कभी भी गरुड़ के साथ झगड़ा नहीं होगा, गरुड़ तुमको अपना छोटा भाई मानेगा तुमको उस समय से, ऐसे उन्होंने बोला। और अश्वशिरा मुनि, तुम भी मेरे बात सुनो, तुम भी चिंता मत करो, तुमको एक काक का शरीर मिलेगा तुमको, लेकिन तुमको दिव्य ज्ञान होगा, काकभूषिंडी है ना, तो तुम्हारे पास अनेक योगिक सिद्धियां होंगे, और इस तरह तुम बहुत त्रिकाल ज्ञानी होकर बहुत श्रेष्ठ बनोगे, तुम चिंता मत करो ऐसे। तो उसके बाद काकभूषिंडी का कथा बढ़ता है, लेकिन ये दो ही लोग, एक बना काकभूषिंडी, दूसरा बना कालिया बना, इनकी पूर्व जन्म का ये कथा है। तो हो गया, समय की पाबंदी है अभी। दो मिनट बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। तो काले के संबंध में मैं बता दिया, फिर भी इधर और कुछ अभी पढ़ा हमने अनर्थ। पहले चीज बताया गया है ईर्ष्या के बारे में, ये कृष्ण संहिता में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं। ये कालिया के अशुभ भावना यमुना को दूषित करता है, इस तरह यमुना को बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, ये कृष्ण प्रेम है। हमारे हृदय में भी जो कृष्ण प्रेम है वो दूषित हो जाता है जब हम अशुभ भावनाओं को मन में रखते हैं। इसलिए आप लोग याद है, आपको एक श्लोक बोला था मैंने पहले, न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभा मति। ध्रुव महाराज के माना भी वही बोला ध्रुव को, किसी भी दूसरे परजीवों के और द्वेष भावना मत रखो, अशुभ भावना मत रखो, क्योंकि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का रस है यमुना की पानी जैसे, उसको दूषित नहीं करना चाहे हमारे विषय से, ऐसे बताते हैं। और चैतन्य शिक्षामृत में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि कालिया के जो बड़े बड़े फण, मोटे मोटे फण, और जिसके अंदर विष से भरा हुआ था, वो क्या क्या संबोधित करता है, अहंकार, हिंसा, कुटीनाटी, और अशुभ भावनाएं इत्यादि भक्तों के साधक साधक के हृदय में ये सब होते हैं, उनसे छूटना चाहिए बोलते हैं। या जानवरी प्रवृत्ति ऐसे बोलते हैं, यही मेन चीज है। श्री प्रभुपाद की, कृष्ण भगवान की, गौर भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवतम की। थैंक यू। हरे कृष्णा।